Hare Krishna. 10:53-31.
दशमस्कंद का 53 चैप्टर 31 तक पूरा कहते हैं। अभी आज आगे कथा बढ़ाएंगे। तो हमने सुना था पिछले सत्र में, जब ब्राह्मण ने भगवान को संदेश देकर वापस लौटा, जो राह देख रही थी रुक्मिणी ब्राह्मण के प्रसन्न वदन को देखकर समझ गया उन्होंने कि भगवान को मिला है उन्होंने, और भगवान ने स्वीकारा है और भगवान जरूर आएंगे। तो इस तरह आश्वासन मिलने के बाद रुक्मिणी वो ब्राह्मण को क्या दिया जाए ऐसे सोचा उन्होंने, कुछ नेकलेस दिया जाए, कुछ गाय दान में दिया जाए। लेकिन उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि जो गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो हमको सिखाते हैं कैसे भौतिक दुनिया से ये संसार सागर को पार करके कैसे भगवत धाम वापस लौटना, ये सिखाने वाले आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उनको हमारे कर्जा को हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे हमारे जीवन में। इसलिए हम बोलते हैं चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई शूद्र हो, कोई कुली, वो आपको बोझ उठाने में मदद कर सकता है ना, जैसे रेलवे स्टेशन में कोई कुली आपको बोझ उठाता है। लेकिन अगर कोई वैश्य हो तो आपको कुछ लोन दे सकता है पैसा। अगर कोई क्षत्रिय हो आपके शरीर की रक्षा कर सकता है। अगर कोई आपको डर है कुत्ता काटने वाला है तो कुत्ता से आपको बचा सकता है। अगर कोई ब्राह्मण हो थोड़ा सदुपदेश देकर आपको मन में शांति प्रदान कर सकते हैं ऐसे। लेकिन वैष्णव जो है वो हमें इस दुनिया से लेकर इसको पार करके, संसार सागर को पार करके भगवत नाम कैसे वापस लौटना, उसके लिए मार्ग बना रहे हैं। या हर प्रसादे भाई ये भवतरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति होय यहा होय ते। ये संसार को पार करके कैसे उस किनारे में पहुंच जाना और उधर कृष्ण को कैसे प्राप्त करना, वो गुरु सिखाते हैं। इसलिए हम गुरु ने हमारे लिए जो किया अपने जीवन में उनको हम कुछ भी कर्जा चुका नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, क्या मैं बेंट में दे सकती हूँ, तो अपने आप को दंडवत प्रणाम कर दिया रुक्मिणी ने, क्योंकि ब्राह्मण गुरु के बराबर है। रुक्मिणी जिस तरह रुक्मिणी भी प्रकृति है, भगवान के पराशक्ति है तो हम भी शक्ति हैं, रुक्मिणी भी शक्ति है, लेकिन हम एकदम छोटे हैं अणुमात्रा। जैसे राधा जी हैं, रुक्मिणी हैं, सीता हैं, इनके अंदर जो भक्ति भावना है वो समुद्र के बराबर है। हमारे में सिर्फ एक बूंद मात्र है, थोड़ा बहुत, और वो भी बूंद अभी छुप गया है, अभी एक सुप्त अवस्था में है। उसको पुनर्जागरण करने के लिए हम इस तरह के कथाएं सुनेंगे। इस कथा से हमें पता चलेगा कि कैसे रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण को किसी भी अवस्था में प्राप्त करना चाहिए, इस तरह का एक दृढ़ता के साथ उन्होंने भक्ति की और कृष्ण को प्राप्त किया उन्होंने। तभी आगे हम कथा को बढ़ा रहे हैं 32 वर्स नंबर। प्राप्तौ श्रुत्वा स्वदुहितुर उद्वाह प्रेक्षणोत्सुकौ अव्ययात् तूर्य घोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः। ये बता रहे हैं कि इस समय क्या हुआ, अभी कौंडिन्यपुर में भीष्मक जो पिताजी हैं रुक्मिणी के, वो सब तैयारी वगैरह कर रहे थे शादी के लिए। तो राजा को पता चला कि कृष्ण और बलराम आए हैं और उन्होंने सुना कि उनके बेटी की शादी को देखने के लिए आए हैं, ऐसे सुना। Eager to witness his daughter's wedding, तो उन्होंने कृष्ण बलराम को स्वागत करने के लिए गया गए वो। देखिए भीष्मक को मालूम नहीं था कि कृष्ण किस लिए आए हैं। कृष्ण आए हैं उनको रुक्मिणी को अपहरण करके लेके जाने के लिए। इस तरह ये भीष्मक जो है वो आप आगे पढ़ेंगे आप कैसे कृष्ण बलराम को स्वागत करते हैं, और दो तीन शब्द पढ़ेंगे और थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। मधुपार्कम उपनी उपानीय वासांसि विरजांसि सह उपायनानि अभिष्ठानि विधिवत संपूजयत। बड़ा ग्रैंड वेलकम दिया इन्होंने कृष्ण बलराम को, और सब रीति रिवाजों का पालन करते हुए उन्होंने मधुपार्क दिया, उनको नए कपड़े दिया, उनकी पूजा वगैरह की। तो आगे बताते हैं उनको अच्छा रहन सहन की रहने की व्यवस्था की थी उनके। तयोर निवेशनम श्रीमत उपाकल्प्य महामति ही ससैन्ययो सानुगयोर आतिथ्यम विददे यथा। देखिए कृष्ण के साथ जो भी सैनिक थे उनके उनके लिए भी सब अतिथियों को उन्होंने ठहरने की व्यवस्था किया उन्होंने। जैसे अगर कोई कंपनी के सीईओ आया है उसके लिए ठहरने की व्यवस्था अलग होता है, अगर कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर्स आए हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था होता है, उसके बाद उनके पास जो नौकर चाकर आए हैं उनके लिए भी कुछ होता है व्यवस्था। ऐसे उन्होंने यथा वो श्लोक आगे आता है यथा वीर्यम यथा वयः 35 श्लोक में, उनका वीर्य उनका वयस यथा बलम यथा वित्तम, चार चीज बोलते हैं, उसके अनुसार उन्होंने ठहरने की व्यवस्था की थी। जैसे यथा वीर्यम का मतलब है वो कितने बड़े हैं उसके अनुसार, और यथा वयः उनके वयस, और यथा बलम और यथा वित्तम, तो उसके अनुसार उन्होंने अलग अलग व्यवस्था की थी। जैसे वैष्णवों में भी ऐसा बताया है कि जब हम आदर देते हैं सन्यासियों को हम अष्टांग प्रणाम करते हैं, और दूसरे वैष्णवों को हम पंचांग प्रणाम करते हैं, करेक्ट है ना। अगर किसी ने अभी तक दीक्षा नहीं ली है लेकिन भक्ति करते हैं उनको हाथ जोड़कर ऐसे मन से हम दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ऐसे बताया है ये गीत में सकल सम्मान को रीते शकति देहो ना था यथा यथा। वो यथा यथा का मतलब है हर एक व्यक्ति के स्तर के अनुसार हमें उनको आदर देना चाहिए, करेक्ट है ना। कैसे तो ये सब वैष्णवों के समूह में भी है, इस तरह बाहर के दुनिया में भी। जैसे ये भीष्मक राजा ने उनके पोजीशन के अनुसार उनको खाने की रहने की व्यवस्था की थी। तो अभी सब कौंडिन्यपुर वासी सब बाहर निकल कर आए अपने अपने महल से, और कृष्ण बलराम को अंदर प्रवेश करते हुए देखा उन्होंने। कृष्णम आगतम आकर्ण्य 36 सब लोग दोहराइए श्लोक संस्कृत में दिखाना, देवनागरी देवनागरी में हिंदी स्पीकिंग ठीक है, आपको संस्कृत लेके आएंगे वो। हाँ कृष्णम आगतम आकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्रांजलि भी पपुस्तन मुख पंकजम। बताते हैं कि कृष्ण आ गए कृष्ण आ गए, ऐसे ये समाचार सारे कौंडिन्यपुर के लोगों में ये बात मच गया। सब लोग क्योंकि जैसे आग फैलता है ऐसे ये न्यूज फैल गया सबको, कृष्ण आ गए ऐसे। विदर्भपुरवासिन, विदर्भ का मतलब कौंडिन्यपुर। आगत्य नेत्र अंजलि भी अपने आंखों को एक बर्तन के समान बनाकर कृष्ण बलराम की सुंदरता को पपुस्तन मुख पंकज, भगवान के मुख पंकज को वो पी रहे थे, ऐसे बताया है आंखों से। ऐसे ही आप पढ़ेंगे जिधर भी कृष्ण आते हैं, जैसे अभी द्वारका के अंदर जब कृष्ण ने प्रवेश किया तभी भी ऐसा कुछ वर्णन आता है। आप पढ़ेंगे, राजमार्गम गते कृष्ण द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्यानि आरुरुहुर् विप्रा कृष्ण ईक्षण महोत्सवाः, ऐसे बताया है उधर है द्वारका में ना? जब कृष्ण द्वारका आ रहे थे हस्तिनापुर से, ऐसा बताया है कि उस समय द्वारका के अनेक कुल स्त्री का मतलब अच्छे खानदान में जन्मे स्त्रियां, तो वो स्त्रियां अपने अपने महल के ऊपर चढ़कर ऊपर से फूल की वर्षा कर रही थी और आपस में बातचीत कर रही थी जब कृष्ण द्वारका के अंदर आ रहे थे। ऐसे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसका मतलब है उस जमाने में भी बड़े बड़े महल थे द्वारका में, सब अपने अपने महल के ऊपर खड़ी थी, अपने सहेली के साथ बातचीत कर रही थी। और द्वारकाया कुलस्त्रिय आरुरुहुर, आगे बताते हैं कि ईक्षण महोत्सव, कृष्ण को देखना ही एक महोत्सव था उनके लिए। जैसे आप देखेंगे हमारे मंदिर में राधा वृंदावन चंद्र को गार्डन में हम लेके आया था ये बोट फेस्टिवल के लिए, है ना, सब जब बाहर उनको लेके आते हैं हजारों लोग देखते हैं बाजू में खड़े होकर। तो भारत में ये आदत है कि जब भी भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है एक जुलूस में, एक जैसे उत्सव मूर्तियों को लाते हैं, तो भगवान आप देखेंगे अनेक मंदिरों में भगवान खेतों को देखने के लिए जाते हैं, उनके अलग अलग वो गांव नहीं तो शहर के एरिया को देखने के लिए भगवान जाते हैं, एक जुलूस में लोग लेके जाते हैं उनको। तो उस समय जिस तरह अभी आप देखेंगे तिरुपति में ये जो ब्रह्मोत्सव होता है उसमें 5 लाख लोग आते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जब रथ यात्रा के दिन निकलते हैं बाहर वो ग्रैंड रोड में, लगभग 10 लाख 15 लाख लोग आते हैं उसको देखने के लिए, है कि नहीं। इस तरह कुंभ मेला में कभी कभी करोड़ों लोग आते हैं। इस तरह भगवान जब आते हैं उनको देखना ही हमारे आंखों का एक उत्सव है बोलते हैं, ये ईक्षण महोत्सव। कारण क्या है आगे बताया गया है उस अध्याय में, द्वारका के अध्याय में वो बताते हैं, नित्यं निरीक्षमानानां यदपि द्वारकौकसां नावितृप्यन्ति हि दृशः नावितृप। ऐसे बताते हैं कि नित्यम निरीक्षमानाना, रोज वो देखते थे कृष्ण को लेकिन उनके आंख कभी थकता नहीं था कभी भी। इस दुनिया में अगर हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं दूर से हम बहुत आदर करते हैं लोगों को, प्रेम भी करते हैं, लेकिन अगर कोई निकट रिश्तेदार हो गया तो कभी कभी हमें उनके नाता रिश्ता में थोड़ा बोर लग जाता है, कभी झगड़ा भी हो जाता है कभी, आप देख सकते हैं इस दुनिया में। खास करके अगर पति पत्नी देखिए शादी होने के पहले तो जब उनको न्यूज मिलता है कि एंगेजमेंट हो गया अभी शादी के लिए 3 महीना बाकी है, आजकल के जमाने में स्त्री पुरुष वो बार बार फोन में बात करते रहते हैं, कभी वो दिन के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन शादी होकर 1 साल के बाद कभी डाइवोर्स लेना चाहते हैं। अगर डाइवोर्स भी नहीं है तो कम से कम झगड़ा तो करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में देखा जाता है कि हम जिस व्यक्ति के निकट आते हैं इसको बोलते हैं अति परिचयात अवज्ञात बोलते हैं। अति परिचय होने से क्या होता है, अवज्ञा करना शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान के संबंध में बोला गया है कि जो द्वारका की रानियां जितना उनकी सेवा करती थी उतना उनकी उनके अंदर सेवा करने की अभिलाषा बढ़ता रहा। ऐसे जितने बार उन्होंने देखा उनको और एक बार उनको देखने की इच्छा हुआ ऐसे। इसलिए वो बताते हैं कि नित्यम, सब लोग दौड़ रही है, नित्यम निरीक्षमाणानां यदपि द्वार कौकसाम न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रेयोदामांगम अच्युतम। कारण क्या है बताते हैं कि ये भगवान कृष्ण जो है वो उनके हर अंग दिव्य अंग है। श्रेयो दामांगम अच्युतम, उनके शरीर ही एक दाम है। उनके आंख कमल के पंखुड़ियों के बराबर है, उनके चेहरा एक कमल के बराबर है। जैसे कुंती महारानी बता रही है, आपके पूरे आपके पांव भी एक कमल के बराबर है, आपके नाभि भी एक कमल के बराबर है, आपके आंखें भी कमल के बराबर है, और आप कमल के एक माला पहने हो, ऐसे एक प्रार्थना करते हैं। नम पंकज नावाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे, ऐसे प्रार्थना करती है। तो आपको प्रश्न उठेगा कि क्यों बार बार कमल की उदाहरण दे रही है, क्योंकि इस दुनिया में कमल जो है सुंदर फूल है, और उसमें शहद भी ज्यादा है, और वो सुगंधित भी है, और वो राज फूल है, सब फूलों का राजा है वो। तो इसलिए भगवान के उदाहरण हमेशा कमल के साथ दिया जाता है। तो नित्यम निरीक्ष श्रियो दामांगम अच्युतम ऐसे बताते हैं, क्योंकि भगवान के हर अंग श्री से भरपूर है। इसका मतलब क्या है, उनके उनके शरीर सब सर्वगुण संपन्न है, सब गुण है उनके अंदर। जैसे चतुष्कुमारों ने विष्णु को पहली बार जब देखा, क्योंकि विष्णु के पदकमलों के तुलसी के मकरंद ये चतुष्कुमारों के नासिका के अंदर चला गया, वो जब वो वैकुंठ द्वार में खड़े थे, तभी वो तो निराकार उपासक थे, वो तो ब्रह्म लीन थे वो लोग। कभी कभी लोग लिखते हैं ब्रह्म लीन, ऐसे ऐसे गुरु ऐसे लिखते हैं, वो लोग ऐसे ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करने वाले थे। कौन? ये चतुष्कुमार। लेकिन जब एक बार वैकुंठ के द्वार के पास गए, उनको रोका गया उधर, जय विजय ने रोका उनको, तभी विष्णु के पदकमलों की जो तुलसी उसके मकरंद जब इनके नासिका में गया, तो तुरंत उनके अंदर भक्ति जागृत हो गया। वो ओंकार को भूलकर वो भगवान विष्णु की उपासक बन गए, भक्त बन गए। ऐसे ही आपने सुना होगा सुखदेव गोस्वामी भी, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन अपने पिता श्री व्यासदेव जी से सुनकर, भागवत सुनकर वो भक्त बन गए वो ऐसे। तो जब वो भक्त बने चतुष्कुमार, उसके बाद ये कुमार भगवान के पदकमलों को रिसर्च कर रहे थे, उनके पदकमलों को देख रहे थे, शोधन कर रहे थे। एक उनके छाती को देख रहे थे, भगवान के छाती में सुंदर गहने पहने हैं भगवान विष्णु, और श्री लक्ष्मी भी उनके छाती में निवास करती है एक शिवच चिन्ह के रूप में, और कोई उनके मुखारविंद को देख रहे थे, एक उनके हाथों को देख रहे थे ऐसे। तो पहली बार जब देखा उन्होंने, इनको उतना आश्चर्य हुआ, किनको? चतुष्कुमार को, क्योंकि भगवान के हर अंग इतने कोमल हैं, जैसे कमल के पंखुड़ियों के बराबर, उसमें खूबसूरत, ऐसे बोला गया कि भगवान के रूप ही सुंदर है। और भी सुंदरता सुनना चाहते हैं आप, तो भगवान की चेहरा सबसे सुंदर है। और भी सुंदरता देखना चाहते हैं, भगवान के चेहरे में जो मुस्कान है और भी सुंदर है, ऐसे बोला है भागवत में। तो इस तरह भगवान को देखने के लिए नित्यम निरीक्षमानानां यदपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति कीदृशः, बार बार देखने के बाद भी द्वारकावासी कभी थकते नहीं थे भगवान को। देखिए कभी कभी भी, अभी पुणे में हम एक बार आ रहे थे स्टेशन से, अभी पूरा इतना बैरिकेड लगाया था, कुछ तो मिस इंडिया का कॉम्पिटिशन चल रहा था, तो हमने सुना कि भारत के सब सुंदरियां आए थे इधर, उधर पुणे के क्लब में, लेडीज क्लब में कहीं, तो उन्होंने मिस इंडिया चुना उधर, तो पूरा स्टेशन से लेकर सब ब्लॉकेड हो गया उधर उस समय। लेकिन क्या मिस इंडिया हमेशा के लिए मिस इंडिया रह पाएगी, सदा नित्य निरंतर काल के लिए? अमेरिका में एक बड़ा एक्ट्रेस थी, उसका नाम था मैरिलिन मोनरो बोलते हैं उनको, मैरिलिन मोनरो। तो पहली बार वो सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी, खूबसूरत थी, तो एक दिन उन्होंने आईने में देखा एक सफेद बाल आ गया, उसी दिन रात को उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। सुना आपने? सोचा कि अभी कोई देखेगा मुझे, ये बाल सफेद हो गया करके लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। उनको मालूम नहीं था आत्मा और शरीर के बीच में क्या फर्क, मालूम नहीं था उनको। हा? तो बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में किसी की भी खूबसूरती हमेशा के लिए टिकता नहीं, लेकिन भगवान की खूबसूरती का वर्धन होता रहता है। इसलिए आगे के श्लोक में बताया है, उधर सब लोग दोहराइए, श्रेयो निवासो यस्यो रह, पान पात्रम मुखम दृशाम, बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। ये बताते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण के छाते में श्री रहती है, एक बाल, एक सोने के बाल के रूप में वो श्री रहती है। कभी इधर निवास करते, कभी पलक कमलों को मसाज करती है, सेवा करती है भगवान के। श्रीयो निवासो यस्य उरह, उरह का मतलब ये स्थान। और बताते हैं पान पात्र मुखम, उनके मुख जो है वही बात बताया है इधर भी, पान पात्र मुखम। वो उनके मुख को देखकर कोई पी सकता है अपने आंखों से, इतने सुंदरता है उनके मुखों में, ऐसे बताया है। और बाहव लोकपालाना, उनके बाहवों में यमराज कुबेर ऐसे लोकपाल, वो लोग देवता लोग हैं, बैठे हैं। और उनके पदकमलों में सारंगाणाम पदाम्बुजम, भगवान की शुद्ध भक्त उनके पदकमलों में बैठे हैं, ऐसे बताया है। क्योंकि ये शब्द सार का मतलब है, आपको मालूम है सार, एक फूल का सार क्या है, मधु। इसलिए ग का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, सारम ग। तो सार निकाल निकाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाला कौन है, वो मधुमक्खी। मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का एक नाम है सारंग। इस तरह एक बार ऐसे घूमने वाली मधुमक्खी अचानक आकर बैठ गया एक पारिजात फूल के ऊपर, और जब पारिजात फूल से चूस कर उन्होंने शहद पिया, तभी पता चला कि इसमें इतना शहद है, वो कभी अंत होता ही नहीं है। तभी वो मधुमक्खी ने सोचा कि मैं इसी पेड़ में रह जाऊं, पारिजात पेड़ में हमेशा के लिए ये शहद पीते रहूं। तो भगवान को भी ऐसे ये पारिजात फूल से तुलना किया है भागवत में, क्योंकि अगर भगवान के पदकों में एक बार किसी जीव ने आश्रय ले लिया, इस दुनिया की ओर मुड़कर वो कभी नहीं देखेगा दूसरे कुछ आश्रय के लिए। कि भगवान के आश्रय एकमात्र ऐसे आश्रय है जो पारिजात फूल के बराबर है, जिसमें अनगिनत मात्रा में शहद है, मधु है। तो इस तरह भगवान जब आ रहे थे, सब लोग विदर्भपुरवासिन है, सब देख रहे हैं। तो वो लोग अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अस्यैव भार्या भवितुम। वो बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति के लिए है, भार्या बनने के लिए एक ही व्यक्ति लायक है, वो कौन है, रुक्मिणी है, ऐसे एक व्यक्ति ने बोला। दूसरे व्यक्ति ने बोला, रुक्मिणी अर्हति नापरा, अरे रुक्मिणी के साथ शादी करने के लिए कोई लायक नहीं है इनको छोड़कर, ऐसे बोला। किसको देखकर, भगवान कृष्ण को देखकर। असावप्यन बद्यात्मा वैष्म्याहा समुचित पति। ऐसे बोला उन्होंने। और कुछ लोग बोल रहे थे कृष्ण के लिए रुक्मिणी अच्छा मैच है, कभी अंग्रेजी में बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर, ऐसे बोलते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर मीन्स, जैसे अगर पति पत्नी शादी करते हैं तो पति को थोड़ा लंबा होना चाहिए, पत्नी को थोड़ा ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये पति ये पत्नी, कभी अगर पत्नी ऐसा है तो उनका हाइट मैच होना चाहिए, इस तरह उनके खूबसूरती मैच होना चाहिए, उनके वायस मैच होना चाहिए। कभी कभी आजकल स्त्री का वयस ज्यादा है, पुरुष का वयस कम है, शादी करते हैं ऐसे भी स्त्री का वयस कम होना चाहिए और इस तरह गुणों 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 में भी मैच होना चाहिए। जैसे रामचंद्र और सीता दोनों के बीच में जब मैच देखा गया, एकदम परफेक्ट मैच था, वो उनकी सुंदरता में भी मैच था, वो भी गुणवती थी, भगवान भी गुणवान थे और सब तरीके से वयस में भी, परिवार में भी, जिस खानदान में जन्मे हैं, सब कुछ इस तरह सबको लगा, सब आपस में लोग बातचीत कर रहे थे। किंचित सुचरितम जन्नस, यू कीप द नेक्स्ट वन रेडी, तेन तुष्ट स्त्रीलोक कृत अनुगृहणातु गृहणातु वैदर्भ्याः पाणिमच्युतः। वो बोल रहे थे लोग, इस त्रिलोकनाथ जो परम भगवान है वो हमसे संतुष्ट हो और हमारे वैदर भी जो रुक्मिणी है उनको इस भगवान कृष्ण के साथ शादी करा दे, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। एवं प्रेम कला बद्धा वदन्ति स्म पुरौ कसः कन्या कन्या चांतपुरात् प्रागात् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम्। देखिए एवं प्रेम कला बद्धा, इसका मतलब है कला का मतलब वर्धन करना, ये लोगों के प्रेम कृष्ण के लिए वर्धन होता रहा होता रहा। ऐसे जब बातचीत कर रहे थे आपस में लोग, तो इस तरह पूरे वैदर्भ में कृष्ण कथा होने लगा। क्योंकि देखिए इस दुनिया में जब भक्ति में आने के पहले आप लोग जरा सोचिए, कोई तो एक्टर एक्ट्रेस की ओर आपका आकर्षण हुआ होगा। जब हम दक्षिण भारत में, तो एक लड़का था हमारे कॉलेज में जो ब्रूस ली को आरती उतारता था रोज, क्योंकि उसको कराटे सीखना था उसको, ऐसे इस तरह कोई तो कुछ सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस अगर उनकी मूवी आता है तो उसको जरूर देखने के लिए जाएंगे। तो हमारे एक मित्र ने बोला उन्होंने एक ही मूवी 100 बार देखा है, ऐसे भी लोग हैं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस तरह कोई खूबसूरत व्यक्ति की, शक्तिशाली व्यक्ति की, धनी व्यक्ति की, इस दुनिया में अगर शक्तिशाली कोई व्यक्ति की अगर आकर्षण हो, वो आकर्षण किधर से आता है? भगवत धाम से आता है। भगवत धाम में भगवान की ओर आकर्षण है। अगर हम भगवान को भूल गए तो इस तरह कोई भौतिक कुछ बड़ा एक्टर एक्ट्रेस की ओर हमारा आकर्षण होता है। लेकिन ये पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि बताते हैं कि जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, अष्टांग योग में भक्ति में, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ऐसे बताते हैं, हमें उन छवियों को हमारे मन से निकालना चाहिए। किसका? सिनेमा एक्ट्रेस एक्ट्रेस, इस दुनिया के लोगों का, क्योंकि उन लोगों की कथा करने से हमें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। कौन एक्ट्रेस किस एक्ट्रेस से शादी किया सिनेमा मैगजीन में आता है और उसको और हजारों बेवकूफ खरीद कर पढ़ते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं। लेकिन अमेरिका में एक एक्ट्रेस थी, उसने 27 बार शादी की और 27 बार करने में 5 बार उन्होंने एक ही व्यक्ति को ट्राई किया, एक ही व्यक्ति से। तो इस तरह की ये गंत कथा, इस दुनिया के जो एक्टर एक्ट्रेस की कथा है उसको सुनने से हमारे हृदय दूषित ही होता है, उससे कुछ लाभ नहीं है। लेकिन पतंजलि बताते हैं जब हम ये कृष्ण कथा सुनते हैं, इधर जो हीरो कौन है, नायका नाम शिरो रत्नम कृष्णास्तु भगवान स्वयं, उनकी कथा सुनने से अभी उनकी जो शक्ति है रुक्मिणी जी, भगवान शक्तिमान है, ये परम शक्ति और शक्तिमान, इनके कथा को सुनना चाहिए। इनके कथा हम सुनेंगे इससे अनेक चीज होता है। एक चीज होता है हमारे हृदय में जो सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस सब निकल जाते हैं और ये भगवान के सुंदर उनके सुंदर वदन का छवि हमारे हृदय में आ जाता है, रुक्मिणी कृष्ण का चित्र आ जाता है। साथ साथ हमारे अंदर जो भोग करने की प्रवृत्ति है इस दुनिया में, वो दूषित प्रवृत्ति वो भी निकल जाता है, सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत होता है। इतना ही नहीं, हम इस दुनिया में जो आसक्ति है, बार बार जन्म लेकर इस दुनिया में वापस लौट कर बार बार अलग अलग चीजों को ट्राई करते रहना, उससे हम छूट कर हम भगवत धाम लौट जाते हैं। इस तरह अनेक लाभ है ये कथा सुनने से भगवान के बारे में। इसलिए इधर बताते हैं कि एवं प्रेम कला बद्धा बदंती स्म पुराउ कसह। इस तरह वैदर्भपुरी वासियां प्रेम के बंधन में आकर बार बार कृष्ण और रुक्मिणी की चर्चा कर रहे थे। इसे एक बात पता चलता है, जब कृष्ण इस दुनिया में अवतरित हुए मथुरा में, उसके बाद वृंदावन गए, द्वारका आए, इधर जो भी वासी हैं ये सब लोग भगवत धाम से आए हैं, और जब भगवान लौटते हैं उनके साथ लौट जाते हैं। जैसे अभी पुणे में कुछ सर्कस आता है तो सर्कस के साथ सब आ जाते हैं ना लोग भी, स्त्री आते हैं, पुरुष आते हैं, कभी हाथी आ जाता है, शेर आ जाता है, जोकर भी आ जाते हैं, है ना, सब लोग आ जाते हैं, और बड़ा टेंट लगाते हैं और ऐसे एक महीने दो महीने के लिए चलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सब वाइंड अप करके दूसरे जिले में चले जाते हैं। तो भगवान ऐसे ही करते हैं, जब भगवत धाम से इधर आते हैं पहले टेंट लगाते हैं वृंदावन में, उन्होंने गोवर्धन को भी लाया, यमुना को लाया, राधा जी और उनके सखियां और गोपगण गाय सबको लेके आया, इस तरह द्वारका में भी मथुरा में भी। और ये भगवान जिधर भी अवतरित होते हैं वो लोगों का उनका चेतना ही ऐसे होता है। जैसे हमने पढ़ा अभी विदर्भपुर के लोगों को मालूम था कि भीष्मक ने शादी आयोजन की थी किसके साथ, शिशुपाल के साथ, फिर भी क्या सोच रहे हैं, इनका शादी होना चाहिए कृष्ण के साथ, क्योंकि इस तरह शक्ति और शक्तिमान जो हैं उनके साथ में पूजा करना जीवों के लिए बहुत स्वाभाविक है। जैसे हम इधर राधा वृंदावन चंद्र की पूजा करते हैं, है ना, इस तरह साथ में ही पूजा करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। कभी कभी अभी गोरखपुर प्रेस के भगवद गीता है, उसमें आप देखेंगे कृष्ण अकेले खड़े हैं उधर, हाँ कुछ कुछ किताबों में अकेले छापते हैं कृष्ण को। इस तरह कुछ कुछ लोग अपने सेठ जी लोग दुकानों में सिर्फ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, लक्ष्मी के हाथ से सोने कैसे गिर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, चिंता मत करो पैसा मिल जाएगा तुमको, ऐसे है। तब प्रभुपाद जी बोला करते थे कि देखो अगर तुम सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हो तो तुम एक छोटा रावण बन जाते हो, क्योंकि रावण को क्या कौन चाहिए था, सीता, लेकिन कौन नहीं चाहिए था, इस तरह बोले कि राम सीता राम का साथ में पूजा होना चाहिए। इसलिए हमारे आल्टर में आप देखेंगे राधा वृंदावन चंद्र है, राधा कुंज बेरी, शक्ति और शक्तिमान दोनों की पूजा। तो इस तरह ये जीव के लिए स्वाभाविक है। जब देखिए जब प्रभुपाद जी गए थे वृंदावन, वृंदावन में उन्होंने देखा कि कुछ लोग, एक राजा राम मोहन राय उन्होंने शुरू की थी भारत में एक आर्य समाज, तो वो लोगों का कुछ गलत फहमी था ये भगवान की मूर्ति पूजा के संबंध में, इसलिए उन्होंने बोला कि सब मूर्ति पूजा बंद, अभी हम मूर्ति को नहीं मानेंगे, ऐसे एक संस्था शुरू की उन्होंने। और वृंदावन में भी उनका वो लोगों का मंदिर है आर्य समाज लोगों का, लेकिन उनके मंदिर में क्या है, अंदर एक काली रहता है, कुछ नहीं है, मूर्ति नहीं है उधर। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोल रहे थे, देखो आर्य समाज लोग जोरदार प्रचार कर रहे हैं कि मूर्ति को पूजा नहीं करना चाहिए, वृंदावन में जाकर देखो उनके मंदिर में कोई नहीं जा रहे हैं, और हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में आकर देखो उधर खड़े रहने के लिए स्थान नहीं, एक राई के दाना डालने के लिए भी स्थान नहीं, इतने हजारों लोग हैं। आप कार्तिक के महीने में जाकर देखिए 5000 लोग हैं, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि भगवान की शक्ति और शक्तिमान राधा कृष्ण इनको स्थापन करके पूजा करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में भगवान कृष्ण खुद उद्धव को सिखाते हैं। मेरी मूर्ति की पूजा जो करते हैं वो मेरे पास आ जाएंगे, भगवान बताते हैं। और भगवान बताते हैं कि भौतिक आंखों से भगवान के आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए मूर्ति मदद करता है, क्योंकि भगवान के आध्यात्मिक रूप जिस तरह है उस तरह मूर्ति बनाया जाता है। और जो भक्त सही भावना के साथ उस मूर्ति की पूजा करते जाते हैं, जैसे एक प्रपद उदाहरण देते हैं, एक आयरन रॉड, एक लोहे का एक रॉड हो, उसको आग में डालो, क्या हो जाता है? वो आग जैसे हो जाता है वो, जैसे आग में डालने से लाल लाल हो जाता है वो। इस तरह भगवान किसी भी ग्रह को पूजा करेंगे भक्ति भावना के साथ, भगवान उस मूर्ति के साथ बातचीत भी कर सकता है शुद्ध भक्त ऐसे। तो इस तरह प्रभुपाद जी बोले कि शक्ति और शक्तिमान को उत्सव मनाना, उनको जुलूस में लेके जाना, उनके लिए कपड़े बनाना, आभूषण पहनाना और हार हर दिन बनाकर पहनाना, उनको भोग चढ़ाना, ये सब जीवों के लिए बहुत स्वाभाविक है और इसमें बहुत आनंद आता है जीवों को। जैसे हम लोग पुष्याभिषेक मना रहे थे, बैठने के लिए स्थान नहीं था मंदिर में, बाहर बड़ा ये लगाया है एक क्लोज सर्किट टीवी, उधर भी भीड़ भाड़ हो गया, उधर भी अभी गेट तक क्राउड था हमारे कैंप मंदिर में। इससे क्या पता चलता है, जीवों के अंदर जो भगवान के लिए प्रेम है और भगवान राधा कृष्ण उनकी साथ में पूजा करने के लिए उनके अंदर कितना आतुरता है वो पता चलता है। इस तरह वैदर्भपुरी वासियों के अंदर सद्भावना जागृत हुआ कृष्ण को देखकर। ऐसे अभी आगे वर्णन आता है, जैसे तो बोला गया है बटेर गुप्तांबिकालयम। अभी बीच में क्या हुआ, वो राजमहल से रुक्मिणी को एक पालकी में बिठाकर लेके जा रहे थे अंबिका के मंदिर की ओर, क्योंकि रुक्मिणी जन्मी थी एक क्षत्रिय खानदान में, राजकन्या थी वो। तो राजा लोग अंबिका के मंदिर में जाते थे युद्ध के पहले, नहीं तो कुछ भी शुभ कार्य शुरू करना तो करते थे, इसलिए उनको एक पालकी में लेके जाते हैं उधर। और आजू बाजू में बड़े बड़े सैनिक हैं, हाथ में तलवार पकड़े हैं, कुछ लोग घोड़ों में हैं और पीछे सैकड़ों हजारों सैनिक हैं, वापस अभी पीछे चल रहे हैं उनके पीछे। तो ऐसा योजना था कि अंबिका के मंदिर में जाकर पूजा करके वापस लौट जाएगी, उसके बाद अगले दिन शादी का दिन था ऐसे। तो अभी उनके अंबिका के मंदिर जाने के वर्णन है, पद्भ्याम विनिर्जयौ द्रष्टुम् भवान्याः पादपल्लवम् सा चानुध्यायति सम्यक् मुकुन्द चरणाम्बुजम्। मातृभिः सार्धम् सखीभिः परिवारिता गुप्ता राजभटैर्शूरैः सन्नद्धैरुद्यतायुधैः मृदङ्गशङ्खपणवास्तूर्य बेर्यश्च जग्निरे। ये बताते हैं कि इस तरह वो जा रही है, वो वर्णन है इधर, पद्भ्याम विनिरेय द्रष्टुम, भवानी के दर्शन के लिए वो जा रही है, लेकिन उनके मन में क्या है बताते हैं कि सा च अनुद्यायति सम्यक् मुकुंद चरणाम्बुजम्। उनके मन सम्यक का मतलब है पूर्ण रूपेण वो समर्पित कृष्ण के पदकमलों में, उनके अपने चित्त में। देखिए भगवान कृष्ण बताते हैं शास्त्रों में भगवद्गीता में कि आप तुम्हारे हृदय को हमारे पास सौंपा दो, बाकी जो भी रखना है आप रख लो, लेकिन हृदय सौंपा दो। लेकिन हम हृदय सौंपाते हैं तो बाकी सब सौंपा देते ही हैं कृष्ण को, आप देख सकते हैं। देखिए ना, इन अवश्य की अवस्था में आदत ऐसा होता है कि हम अलग अलग पदार्थों को भगवान को, जैसे एक बड़ा करोड़पति आता है मंदिर में, ऐसे निकालता है पर्स, 1 रुपया का कॉइन डालता है, हे भगवान आपके लिए 1 रुपया, हमारे लिए 1 करोड़, ऐसे रखता है। भगवान देखते हैं कि अगर कोई भिकमंगा आता है मंदिर में, वो आकर भगवान को 1 रुपया देता है, तो भगवान देखते नहीं कितना एक व्यक्ति देता है, भगवान देखते हैं कितना रखता है अपने पास। भगवान बुद्धिमान है ना, देखेंगे तो भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में साधारणतः जीव जो है वो स्वार्थी होते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं ऐसे, और हृदय को कृष्ण को देना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि इधर जो बताया जा रहा है अंबिका की पूजा, और एक श्लोक आता है आप पढ़ेंगे भागवत में, पहले स्कंद में आता है, मुमुक्षवो गौर रूपान, जो वैष्णव लोग हैं वो गौर रूप जैसे भद्रकाली इस तरह के रूपों को वो पूजा नहीं करते हैं, वो ऐसे बोला गया है। इसका कारण क्या है, ये काली भद्रकाली इनकी पूजा में ये काटते हैं, चिकन काटते हैं, कभी गाय कभी बकरी को काटते हैं, वो अर्पण करते हैं इसे। जैसे मैं जब स्कूल जाता था साइकिल में, तो उन दिनों में जब हम 7वीं 8वीं कक्षा में थे, तभी हम एक देवी के मंदिर में जाते थे। तो एक दिन हम गए तो उधर अंदर जा ही नहीं पाए, क्योंकि पूरा है सब दिशा में हमने ये देखा चिकन है? पूरा चिकन काट काट कर काट कर सब तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं है? तो उसके बाद हम गए नहीं कभी उधर, डर गए। बाद में भागवत में हमने पढ़ा कि देवी को इस तरह अर्पण करते हैं। ये गांव है हमारे, एक ब्रह्मचर्य उस गांव से है, उनके गांव में वो बोल रहे हैं कि कभी कभी 5,000 बकरा काटते हैं कोई बड़ा फेस्टिवल के लिए। ये अनेक लोगों को मालूम नहीं है कि इस तरह दूसरे जंतुओं को ये हिंसा पहुंचाना बड़ा पाप है, महापाप, लोगों को मालूम नहीं है ऐसे। तो भागवत ने बताया है कि अगर कोई देवी की पूजा ऐसे करता हो, अगर वो वैष्णव बन जाता है बाद में, ऐसे एक कर्नाटक में एक भक्त है ना, हमने मिला, लेकिन वो भक्त जो है अभी वैष्णव बन गया, तो तुरंत समझ जाएगा कि ये देवी जो है ये महामाया है, दुर्गा है। तो ये दुर्गा के पास त्रिशूल है, लेकिन ये कृष्ण के बहिन है। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ मंदिरों में कृष्णा सॉरी विष्णु और दुर्गा देवी ये भाई बहन है, उनको भी पूजा करते हैं कुछ मंदिरों में ऐसे। लेकिन ये गौर रूपों का क्यों वैष्णव लोग पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण की उपासना में इस तरह के पदार्थ अर्पण किए जाते हैं। लेकिन सीताराम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण इनकी उपासना में क्या क्या अर्पण किया जाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम अंडम मांसम, है क्या वो, कुछ अंडा मांस कुछ नहीं है ना? सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम वो अर्पण करते हैं। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि ये सब अर्पण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए भगवान कितने बुद्धिमान है, वो बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पण करो। आधुनिक इंसान क्या करता है, आजकल एक अगरबत्ती आता है जिसके टिप में एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, किसी ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है, आप सब ने देखा। हाँ, अभी वो रख देता है भगवान के पास। हाँ, और फूल भी क्या करता है, प्लास्टिक प्लास्टिक में फूल खरीद कर सजा लेता है, बोलता है कि अभी भगवान को जो करना कर लिया, अभी जीवन भर हमको चिंता नहीं। आजकल एक छोटा लैम्प भी आता है, लो वोल्टेज लैम्प ऐसे जाता है, देखा आपने, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का। देखिए भगवान बोलते हैं कि तुम पत्र अर्पण करो, फूल अर्पण करो, क्योंकि फूल अर्पण करोगे तो अगले दिन सूख जाएगा वो, आपको उसको निकाल कर और नया लगाने के लिए थोड़ा यत्न करना पड़ेगा, और उस यत्न करने से सुकृति बढ़ेगा। और एक चीज है, अगर भगवान के पास निकट जाकर हम फूल को निकालते हैं, उनके चेहरे को देखने की संभावना है, उनकी खूबसूरती को देखेंगे तो उनके साथ संबंध बढ़ेगा भगवान के साथ, इसलिए भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोलते हैं। लेकिन मूर्ख लोग आजकल टायर क्या है, अगरबत्ती, एक प्लास्टिक अगरबत्ती को रख देते हैं भगवान को, कैसे संबंध बढ़ेगा भगवान के साथ? तो ये धोखा है कि नहीं? इसलिए ये अंबिका के मंदिर में जा रही है, क्योंकि ये क्षत्रिय परिवार का आदत है, इसलिए वो जा रही है, क्योंकि पिताजी ने बोला है वो जा रही है। क्योंकि राजा लोग युद्ध भूमि में, युद्ध क्या है, अभी कुरुक्षेत्र युद्ध है, वो भद्रकाली का क्रोध का प्रकटीकरण है युद्ध। जब भद्रकाली, जो कृष्ण के बहिन है, वो सोचते है कि अरे बद्ध जीव, देखो सब कितने भोग करने की प्रवृत्ति में पड़े हैं, कृष्ण को भूल कर अपने ही मजे में हैं, और लाखों लाखों ऐसे बद्ध जीव हो गए, क्या किया जाए। भद्रकाली क्या करती है, दो देशों के बीच में ऐसे युद्ध मचा देती है। जैसे कभी कभी क्लास टीचर क्या करते हैं, दो विद्यार्थियों को बुलाते हैं, तुम इसका कान पकड़ो, तुम इसका कान पकड़ो, दोनों बैठो उठो, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे टीचर कराते हैं कुछ विद्यार्थियों को। ऐसे ही भद्रकाली क्या करते, दो देशों के बीच में बड़ा युद्ध मचा देती है। जब ऐसे खून बहता है उस युद्ध में, वो भद्रकाली का, भद्रकाली हा 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 ऐसा हंसती है वो, उसको बहुत आनंद आता है कि अच्छा इनको दंड मिला, अभी अभी ये सब जीव जग जाएंगे, अभी दंड प्राप्त होने के बाद शुद्ध होकर अभी अगले जन्म में सुधरेंगे, ऐसे सोचती है, समझा ना। इसलिए वो लोग, क्षत्रिय लोग जाते हैं अंबिका के पास, क्योंकि ये क्षत्रिय की बेटी है, उनके पिताजी ने भेजा, इसलिए वो जा रही है, जा रही है अंबिका के मंदिर, लेकिन स्मरण कर रही है मुकुंद चरणाम्बुजा। इस तरह आप लोग भी वैष्णव भक्त हैं, अगर आपके माता पिता आपको बुला रहे हैं, आओ गणेश के मंदिर में आओ, शिव जी के मंदिर में आओ, अंबिका के मंदिर में आओ, जाने में कुछ हरकत नहीं है, लेकिन जाते समय मुकुंद चरणाम्बुजा, राधा वृंदावन चंद्र को मन में रखते ही हमें जाना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर के सामने एक ये था पहले, एक फार्म हाउस था, तो उधर हम लोग कार्यक्रम करने के लिए आते थे, उधर एक देवी का मंदिर है। अगर एक वैष्णव भक्त देवी के मंदिर, गणेश के मंदिर अगर वो देखते हैं, तो क्या करना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सब भगवान के भक्त हैं। लेकिन हमारे हृदय हम देते हैं किसको, कृष्ण को देते हैं, इसलिए बताया गया है मुकुंद चरणाम्बुजम। अभी आगे के श्लोक में वर्णन आता है, उन्होंने इधर बताया है कि यू कैन हेल्प मी, यू कैन रीड द ट्रांसलेशन इन हिंदी, यू कैन टेल, टेक अनदर माइक, आई कैन से माई थ्रोट लिटिल बिट, यू कैन गेट अनदर माइक, यू कैन टेल इन हिंदी दिस टू थ्री ट्रांसलेशन। That 40-41 verse translation, Hindi में बोलना। हाँ माइक आकर। No no, sound is not coming. You take this one.
रुक्मणी जी चुपके से अपने पैरों पर देवी के चरणों चिन्हों को देखने के लिए गई देवी के मंदिर में, और वहाँ पे अपनी माता और सखियों के साथ में और राजा के सैनिकों के साथ में, जो कि अपने हथियार लिए हुए थे हाथ में, केवल उनका मन भगवान के चरणों में लग गया। और जब मृदंगा, शंख और बिगुल बज रहे और बिगुल बजने लगे उस समय पे, और वधु के पीछे हजारों दरबारी कई तरह की ऑफरिंग्स, कई तरह के उपहार लेके, और बहुत सारी ब्राह्मण पत्नियां गाते हुए और प्रार्थना करते हुए, और गार्लैंड्स सैंड्स और कपड़े ज्वेलरी लेते हुए, और प्रोफेशनल सिंगर्स और गाने वाले, बैंड बजाने वाले, क्रॉनिकलर्स एंड हेराल्ड्स, तो ये लोग रुक्मणी जी के पीछे पीछे साथ में चलते गए।
देखिए अरे वैदिक संस्कृति में आप देखेंगे, जिस तरह इधर आपने सुना, जब रुक्मिणी वो पालकी में गए मंदिर, लेकिन उनके साथ साथ कुछ लोग थे जो वैदिक मंत्र उच्चारण करने वाले, वो कर रहे थे मंत्र, कुछ लोग गायक थे वो गा रहे थे, और कुछ लोग राजा भीष्मक की महानता बताने वाले, सूत मगध वंदिन ऐसे अलग अलग नाम है उनका, वो लोग वो कर रहे थे ऐसे, और उनके सहेलियां थी सखियां उनके साथ, वो भी गई, और उनके माताएं थी, माताएं का मतलब है भीष्म की अनेक रानियां थी, वो भी सब गए, क्योंकि बहुत बड़ा महाउत्सव है। तो उस जमाने में शादी का मतलब बड़ी बात है, जैसे मेरे बहनों की शादी मैंने देखा है, एक बहन की शादी में 3,000 लोग आए थे, और वो शादी 3-4 दिन तक गया हुआ, उसमें बहुत कुछ रीति रिवाज होते हैं। तो आजकल के शादी तो बहुत कम टाइम में हो जाता है, ये छोटा हॉल जो है इसको अभी कल्याण मंडप बनाया है, इसमें कभी कभी क्या है 100-200 लोग आते हैं, हो जाता है, अनेक लोग टेलीफोन में बोल देते हैं ये जो भी ये करना होता है आजकल। लेकिन वैदिक संस्कृति में शादी के लिए प्रिलिमिनरी, शादी के दिन के पहले बहुत कुछ होता है, उसके आगे के दिन भी होता है। तो पति पत्नी जो नए अभी शादी हो रहा है जिनका, उनके बीच में आदर प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए अनेक कुछ रीति रिवाज है। जैसे एक रिवाज है, तो पति एक छत्री लेकर, हाथ में कुछ किताब लेकर, वो बोलेगा कि मैं अभी काशी जा रहा हूं, तो वो चला जाएगा, पूरा नहीं चला जाएगा, इधर से उधर तक जाएगा वो, तो लड़की के मामा जो है वो भागेंगे इधर से, भागकर बोले जाओ मत, मैं कन्यादान देना चाहता हूँ, आप उनको स्वीकारो। वो बोलेगा नहीं, हमको शास्त्र पढ़ना है, हमको मोक्ष प्राप्त करना है। वो बोलेंगे नहीं, तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, और ये लड़की जो है हमारी तुम्हारी भक्ति में सहायता देगी, हम आपको अश्योरेंस देते हैं। तो वो वापस लौट कर आ जाएगा। इस तरह के अनेक रीति रिवाज हैं, कितने लोगों को मालूम है आपको, देखा आपने। तो इस तरह मैंने एक बोला आपको, ऐसे लगभग 50-60 अलग अलग चीजें हैं। तीन तो शादी कभी कभी 4-5 दिन होता है शादी का, लेकिन ये सब रीति रिवाज के पीछे भी बड़ा मर्म है। क्या मर्म है, जैसे ये एक छोटा बच्चा आपके पांव में पांव पकड़ता है, कोई माता है कोई प्रभु जी है, एक छोटा बच्चा आकर आपके पांव में गिरता है, तुरंत आपके मन में एक तरह का करुणा भावना उत्पन्न होता है, तुरंत आप इधर उधर देखते कुछ लेकर कुछ उसको भेंट देना चाहते हो आप, है कि नहीं, कम से कम उसको प्रेम दिखाते हो आप उनको। इस तरह नमस्कार से आशीर्वाद प्राप्त होता है, नमस्कार करने से। इस तरह हर एक रीति रिवाज का कुछ ना कुछ मतलब है शास्त्र के। तो जब एक स्त्री पुरुष के बीच में 3-4 दिन का शादी होता है, हजारों लोग आते हैं, तो वो स्त्री पुरुष दोनों शादी को गंभीरता से लेते हैं, आपस में जितना भी झगड़ा हो हम कभी छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। जैसे गांधी जी के बारे में सुना हमने, कस्तूरी बाग के साथ एक बार कुपित हो गए, वो उन्होंने डांटा उनको, निकल जाओ इधर से, तो निकल गई घर से, तो 1 घंटे के बाद गांधी जी दरवाजा खोला, देखा कि उधर ही बैठी है बाहर, पूछा उन्होंने क्यों इधर बैठी है, मैंने बोला निकल जाओ ना, वो बोले कि मैं किधर जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में जाऊंगी तो माता पिता मना करेंगे, उनको बुरा लगेगा, मुझे पता नहीं चला कि मैं किधर जाऊंगी। तो गांधी ने बोला ठीक है अंदर आ जाओ, इतना ही हुआ ऐसे। तो कभी कभी बड़ा झगड़ा हो गया तो अपने माता पिता के घर में चली जाती थी 1-2 महीने के लिए, और पति आकर उनको माता पिता के साथ बातचीत करके वापस लेके जाएगा, वो इतना ही होता था उन दिनों में। तो इसलिए रीति रिवाज से दोनों डरते भी हैं, अरे इतना यज्ञ के सामने हमने वचन दी है, भगवान के सामने इतने बड़े बड़े लोग, मामा थे दादाजी थे दोनों पक्ष के साइड के संबंधियों के इतने लोग आए थे, लेकिन आजकल शादी भी बहुत छोटे मात्रा में लोग आते हैं, बड़े रिलेटिव्स नहीं, आप रिलेटिव सब कोई कनाडा में है, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, कोई इधर है उधर है, और स्त्री पुरुष भी गंभीरता से लेते नहीं है, क्योंकि ये संबंध को, ये शादी में पति पत्नी दोनों का जिम्मेदारी बहुत है। ना शादी किए बिना रहना कुत्ते बिल्ली के बराबर है, कुत्ते बिल्ली वही करते हैं, उसमें शांति भी नहीं है आश्रय भी नहीं है उसमें। लेकिन पति पत्नी जब इस तरह का रीति रिवाजों को पूर्ति करके एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर, जब भी तकलीफ होता है तभी भगवान का आश्रय लेना, तभी वो दोनों भक्ति में आगे बढ़ते हैं ऐसे। इसलिए इस तरह ये रीति रिवाजों को करने के लिए सब उनके सखियां और उनके माताएं सब गए अंबिका के मंदिर में। रीड टू मोर वर्सेस, वन मोर, टू मोर, यहां 44।
देवी के मंदिर पे पहुंचने पे रुक्मणी जी ने पहले अपने चरण कमल और हाथों को धोया और फिर आचमन किया, और तब शांति से बैठ के वो माता अंबिका के सामने आई। 45। जो बूढ़ी ब्राह्मण की पत्नियां थीं, जो उन्हें सारे रीति रिवाजों का ज्ञान था, वो रुक्मणी जी को भवानी के सामने लेकर आई और उनसे आदर संस्कार किया। और जो भवानी, जो भगवान शिव भव की पत्नी है,
इससे क्या पता चलता है, ब्राह्मणों की पत्नी भी बहुत निपुण थे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लोग बड़े बड़े मंत्र का उच्चारण करते थे और पत्नियों को कुछ नहीं मालूम था। आप पढ़ेंगे भागवत के दशम स्कंद में, वृंदावन में जब राक्षसी पूतना आती है, वो उसके बाद एक प्रसंग आता है जिधर स्त्रियां आचमन करती है, उनको मालूम है आचमन कैसा करना चाहिए, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, आचमन करती है। उसके बाद अनेक स्वस्ति वचन वगैरह बोलती है। इसका मतलब है स्त्रियों को भी कुछ रीति रिवाज मालूम थे जिससे बच्चे की सुरक्षा प्रदान किया जाए कैसे। इस तरह ब्राह्मण की पत्नियां जानती थी जब मंदिर में गए कैसे पूजा करना चाहिए। तो आजकल के जमाने में बच्चे बच्चियां, लड़का लड़कियां, इनको क्या हो गया है, जैसे हम एक घर में गए थे कुछ कार्यक्रम करने के लिए, बड़े धनी लोग उनके कुछ मित्रों को बुलाया था उन्होंने, उनके दो बच्चियां कमरे के अंदर थे, कुछ वीडियो गेम्स खेल रही थी वो। तो पिताजी ने बोला स्वामी जी आए हैं हमारे घर में, आ जाओ बुलाओ बच्चों को बुलाओ। तो दोनों बेटियां आ गई, वो तो आठवीं नौवीं कक्षा में, बोला बेटा स्वामी जी आए हैं नमस्कार करो और बैठ जाओ, कथा बोलने वाले हैं। नहीं नहीं हमको टाइम नहीं, चले गए जाकर वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो आजकल के जमाने में ये जो आप लोगों की वॉइस की, जो इधर बड़े लोग हैं इधर, इसके आगे का जनरेशन में बड़ा गैप है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि ये बच्चों को मालूम नहीं। जैसे हमने, मेरे आंखों से मैंने देखा है, मेरे बहिने जल्दी उठती थी, सुबह उठकर पहले नहा धोती थी, रेडी होकर पूजा रूम में जाकर भगवान के लिए रंगोली बनाना सब बनाती थी, उसके बाद घर के बाहर जाकर पानी फेंक कर उधर रंगोली बनाती थी। ऐसे इतने हमारे कंपाउंड में स्त्रियों का उनका बड़ा ग्रुप था, 20-25 लोगों का, सब रंगोली शुरुआत में छोटा छोटा बनाया, बाद में बड़ा रंगोली बनाना शुरू हो गया। तो एक बड़ा रंगोली बनाने के लिए कभी कभी रंगोली नहीं, सफेद पाउडर से बनाते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यू नो कोलम, व्हाट यू से इन हिंदी, समझे ना आपने, अलग अलग डिजाइन होता है। तो इतने डिजाइन वो बनाते थे, तो हम जो पुरुष लोग थे हम लोग भी सीखने लगे उनको देखकर। हम लोग भी नोटबुक में, बड़ा बड़ा नोटबुक था हमारे पास अलग अलग डिजाइन बनाकर, तो उसको रखकर हम वो बनाते थे ऐसे सुबह। तो भगवान को गार्डन में जाकर फूल लेके आना इस तरह। तो आजकल के जमाने में इस तरह कैसे सुबह उठकर ये विष्णु व्रत वगैरह करना, नहाना धोना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, माता पिता को दंडवत प्रणाम करना, और कुछ पूजा पाठ करना और भगवान के लिए कुछ समय बिताना, ये सब बहुत कमती होता जा रहा है। इसलिए ये माता पिता जो हैं उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है कि बच्चों को भी लाइन में लाने के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करें। बच्चे तो बोलेंगे नहीं नहीं हम फ्रेंड्स के साथ घूमने वाले हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो उनको कैसे उनके अंदर भगवान की ओर रुचि को जागृत किया जाए, उसके लिए माँ बाप का भी बड़ा कर्तव्य है। उनको ऐसे मौका एक प्रदान करें जिसमें उनकी भक्ति जागृत हो, नहीं तो वो भटक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, बाद में वो पछताएंगे। तो इस तरह है, वो ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां जो गई थी इनके साथ, उन्होंने बोला कि कैसे पूजा करना चाहिए, और वो माताओं ने बोला रुक्मिणी को, हे रुक्मिणी अभी तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसको प्रकट करो, ऐसे बोला उन्होंने। तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, सब लोग दोहराए 46। नमस्ये त्वाम्बिके भिक्ष्णम् स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। देखिए क्या बोल रही है, नमस्ये तु अंबिके अभीक्ष्णम्, हे अंबिके मैं आपके पदकमलों में लगातार मैं बार बार मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। स्वसंतान युताम शिवाम, आप शिव जी के साथ बैठी हो और आपके संतान कार्तिकेय और गणेश वो भी बैठे हैं साथ में, तो लगता है कि ऐसे एक मंदिर में गई है जिधर शिव जी हैं, पार्वती हैं और गणेश और कार्तिकेय हैं, तो ऐसे बता रही है। और भूयात ऐसे हो जाए, आप ऐसे एक वरदान दो, पतिर में भगवान, भगवान कृष्ण मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हो, कृष्णस्तद अनुमोदता, इसके लिए आप अपनी आशीर्वाद दो मुझे, ऐसे प्रार्थना कर रही है। तो यही प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर हम किसी देवता के पास भी हम जाकर प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना ऐसे होना चाहिए कि आप कृष्ण की ओर हमें आगे अग्रसर होने के लिए मदद करिए, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। जैसे गोपियों ने कात्यायनी व्रत रखा, वृंदावन में हम सुनते हैं, जैसे दक्षिण भारत में एक आंडाल नाम का एक बहुत बड़े श्री वैष्णव हैं, जिनको रामानुजाचार्य और बाकी आलवार सब उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। हमारे मंदिर में आप देखेंगे आंडाल करके उनका इसे ये होता है, तो वो कृष्ण का ही एक रानी है ये द्वारका के, लेकिन वो रानी इस दुनिया में अवतरित होती है आंडाल के रूप में। तो ये आंडाल जब छोटी बच्ची थी, एक तुलसी के बगीचे में मिली वो उनके पिता को, तो वो थोड़े बड़े होने के बाद जब उनके पिताजी भगवान रंगनाथ जी को हर दिन बड़ा एक हार पहना देते, तो एक दिन उन्होंने कमरे में देखा ये स्त्री, ये लड़की उसको लेकर पहन रही थी और ऐसे आईने में देख रही थी ऐसे। तो पिताजी बहुत कुपित हो गए, बोले आंडाल को, एक बड़ा गलती कर दिया तुमने, ये भगवान को अर्पण करने के लिए रखा था मैंने, तुमने कैसे इसको उठाकर पहन लिया। वो बोली नहीं नहीं मैं देख रही हूँ भगवान को पहनाने के लिए लायक है क्या नहीं, इसलिए मैंने ऐसे देखा, ऐसे बोली वो। तो पिताजी उनको डांटने के बाद और एक हार बनाकर लेके गया वो रंगनाथ जी के पास। रंगनाथ जी बोले मुझे ये नया हार नहीं चाहिए, वो चाहिए मुझे, तुम्हारी बेटी ने जो पहना, तुम्हारी बेटी के अंदर जो भक्ति भावना है उससे मैं प्रेरित हूँ, हर दिन मैं ऐसे ही पहन रहा हूँ, तुम कैसा नया सिस्टम बना रहे हो अभी, तुमको मालूम नहीं कि हर दिन वो पहन कर हमको पहना रही है, तुमको मालूम ही नहीं, ऐसे बोले रंगनाथ जी। तो पिताजी भी डर गए, तो समझ गए कि मेरा बेटी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी अवतरित हुई है। उसके बाद वो खुद भी पूजा करने लगी उनकी। तो जब वो बड़ी हो गई, उनके पिताजी ने बोला तुम्हारे लग्न करना है, अभी समय हो गया, किसके साथ तुम शादी करोगी। वो बोला कि भगवान के सब रूपों का वर्णन करिए। तो दक्षिण भारत में 108 दिव्य देशम है, तो हर एक दिव्य देशम के श्री विग्रह का नाम बताया उन्होंने और उनके गुण उनकी लीलाएं पिताजी ने बताया। तो बैठकर इन्होंने सुना पूरा। अंत में बोला कि मैं समझ गई कि मेरा पति बनेंगे रंगनाथ जी, ऐसे बोलो श्रीरंगम में। तो पिताजी ने बोला मेरी ओर से मैं क्या करूं। वो बोले कि आयोजन कीजिए, बहुत बड़ा शादी का आयोजन हुआ। वो गई रंगनाथ मंदिर में, रंगनाथ मंदिर के गर्भगृह में अंदर प्रवेश किया, भगवान की पदकमलों की ओर अग्रस हुआ और उधर अचानक भगवान के पदकमलों में वो अप्रकट हो गई जी आंडाल। तो जब गर्भगृह खोला, अंदर नहीं थी वो, तो भगवान के हृदय में ही रहने वाली है, लक्ष्मी है वो आंडाल ऐसे। तो ये आंडाल का भी विग्रह आप देखेंगे हमारे बालाजी मंदिर में, राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में आप देखेंगे उनका एक ये होता है, व्हाट इज ए वुमन, दे वेयर लाइक दिस ना हियर, यू नो दैट हेयर, दे टाई लाइक दिस एंड दे वेयर लाइक दिस, यू नो व्हाट इट इज, यू डोंट नो, माता ऐसे पहनती है ना, मालूम है ना आपको, ऐसे बांध कर ऐसे पहनती है, जुड़ा बोलते हैं इसको, जो भी है सब समझ गए है ना। आज आप देखेंगे वो उनका, हाँ, दक्षिण भारत में बड़ा श्री विग्रह है उनका। उन्होंने ये गीत लिखा है, उसमें वो गोपियों का भाव धारण करते हुए वो बोलती है कि हे भगवान, आपको प्राप्त करने के लिए हम मार्गशीर्ष महीने, जो आपके लिए बहुत पसंद है, उस महीने में हम सब गोपियों को वो बोल रही है, हे गोपियों सब उठ जाओ, क्या सो रही हो सुबह सुबह, अगर आपको कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना है तो नींद को भूल जाओ, जग जाओ सुबह सुबह, आओ हम सब यमुना में जाएंगे, हम नहाएंगे और हम ये काजल नहीं पहनेंगे और बाल को बांधेंगे नहीं उस महीने में, क्योंकि हम खुद की शोभा को नहीं बढ़ाएंगे उस दिन, उस महीना, और हम सिर्फ हम खिचड़ी खाएंगे, उपवास रखेंगे, बाकी कुछ ऐश्वर्यशाली पदार्थ व्यंजन नहीं बनाकर खाएंगे हम, और दूसरे लोगों को दोष आरोपण नहीं करेंगे हम, किसी का भी निंदा नहीं, सबको अच्छा बोलना, और हमारे पास जो भी यथाशक्ति भगवान ने दिया है उसके अनुसार हम दान धर्म करेंगे ऐसे, और हम सदा नित्य निरंतर कृष्ण का नाम लेंगे, और हम कात्यायनी के पास जाकर हम प्रार्थना करेंगे कि हे कात्यायनी, तुम हर एक स्त्री को आप पति प्रदान करते हो और हमें आप कृष्ण को पति के रूप में प्रदान करो, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे वो गाती है ये गीत में, एक सुंदर गीत है, मैं गा नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तमिल में वो। तो इस तरह इन्होंने भी ऐसे ही प्रार्थना किया। Yeah, next translation you can say 47, 48. Yeah.
Rukmini ne jal sugandhi ant अन्न धूप वस्त्र माला हार आभूषण तथा अन्य संस्कृत उपहारों से और दीपकों की पंक्तियों से देवी की पूजा की। उन्हीं के साथ साथ विवाहिता ब्राह्मणियों ने उन्हीं वस्तुओं से और नमकीन पुए पान सुपारी जनेयू फल तथा गन्ने के रस की भेंटे चढ़ाकर पूजा की। 49 स्त्रियों ने दुल्हन को प्रसाद दिया और फिर आशीर्वाद प्रदान किया। उसने भी उन्हें तथा देवी को नमस्कार किया और प्रसाद ग्रहण किया। तब राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और वे रत्न जटित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक दासी को पकड़कर अंबिका मंदिर के बाहर आई।
अभी अंबिका के मंदिर में पूजा हो गया, अभी बाहर निकल रही है। तो अपने एक हाथ से वो अपने सखी की हाथ पकड़ रही है ऐसे, तो रुक्मिणी के हाथ में अनेक कंकण है, सोने के सुंदर कंकण है, तो उनके हाथ क्यों पकड़ती है सखी की? अभी थोड़ा डर है उनको, क्योंकि अगले क्षण क्या होने वाला है, अभी कृष्ण आएंगे कि नहीं, कृष्ण ने तो बोला है जरूर आएंगे, नहीं तो कृष्ण आने के बाद भी बड़ा हलचल मच जाएगा, बड़ा झगड़ा होने वाला है, तो उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है उनके फ्रेंड सखियों से, आजू बाजू में सखियां हैं, तो उनके हाथ पकड़ रही है ऐसे ऐसे। अगले श्लोक पढ़ेंगे अभी 51। तां देव मायामिव धीर मोहिनी सुमध्यमां कुंडल मंडितानां श्यामां नितंबार्पित रत्नमेखलां व्यंजस्तनीं कुंतल शंकितेक्षणां। देखिए इधर रुक्मिणी के एक सुंदर वर्णन है, इधर उनके रूप कैसा था, ताम देव मायामिव धीर मोहिनी, उनको देखकर सब राजा लोग जो देख रहे थे उनको लगा कि ये माया, अभी माया देवी जो होती है उनकी सुंदरता को देखकर सब इस दुनिया के लोग मोहित होते हैं, ये मायावी रूप इस दुनिया में, ऐसे ही उनको लगा। इसका कारण क्या है हम बता सकते हैं, देखिए सीता माता लक्ष्मी नहीं तो रुक्मिणी राधा रानी, इनके ऊपर अगर कोई बुरा नजर डालता है कोई व्यक्ति, तुरंत वो अंतरंग शक्ति जो आध्यात्मिक रूप जो है उसके और इनके आंखों के बीच में एक बड़ा कर्टन आ जाता है, उस कर्टन में उनको जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ मायावी रूप है, उनको सिर्फ मायावी रूप दिखाई देता है, कोई भी बुरा नजर नहीं डाल सकते हैं भगवान के पराशक्ति के ऊपर, रुक्मिणी के ऊपर। अब ये लोग देख रहे हैं रुक्मिणी को, इसलिए देव माया इव, इव का मतलब है वो दिख रही थी माया जैसे उन लोगों के लिए, लेकिन वो कौन थी, भगवान के अंतरंग शक्ति थी, वो महामाया नहीं थी, योग माया थी। और सुमध्यमाम उनके कमर जो थे, जैसे डमरू में होता है ऐसे कमर, उसको सुमध्यमाम बोलते हैं। कुंडल मंडितानना उनके घुंघराले, उनके सुंदर बाल थे उनके, और ये बताते हैं कि श्यामाम नितंब अर्पित रत्न मेखला, इसका मतलब है जब ये एक स्त्री 12-14 साल की होती है तो ये बोल रहे हैं कि उनके स्तन ऐसा था कि कोई 14-15 साल का स्त्री के जैसे ऐसे रत्न मेखलाम, तो ऐसे हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। कुंतल शंकित क्षणाम, उनके बाल ऐसे सामने गिर रही थी, लेकिन उनकी आंखें ऐसे 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 इधर उधर देख रहे थे, एक शंकित इक्षणाम, शंका के साथ, क्यों ऐसे आंख इधर उधर हिल रही है, क्योंकि वो कृष्ण को ढूंढ रही है, तो थोड़ा चिंता के कारण आंखों में थोड़ा टेंशन दिखाई दे रहा है। शुचि स्मिताम बिंबफलाधर द्युति, शोणायमान द्विज कुंद कुड्मलाम पदाचलंतीं कलहं सगामिनीं सिंजत कलानो पुरधाम शोभिना। शुचि स्मिता, शुचि का मतलब है शुद्ध, स्मिता का मतलब है जैसे एक बोले बाले हंस, जैसे कभी कभी बच्चे आप देखते हो, बच्चे बच्चे इतने मासूम दिखते हैं, तो कभी कभी एक छोटे बच्चे को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो बहुत मासूम है, बोला बाला, तो उनके शुचि स्मिता, उनका स्मित भी ऐसा ही था। बिंब फल अदर द्युति, उनके अधर बिंब फल के बराबर लाल लाल थे, और उसके द्युति के कारण उनके जो दांत थे, जो जैस्मिन को क्या बोलते हैं, जैस्मिन मोगरा, मोगरा बोलते हैं क्या, जैस्मिन, जैस्मिन इज मोगरा और नो, क्या बोलते हैं ना, जुई, जुई है ना, जुई इज करेक्ट नेम, ओके। तो जैसे जुई जो होता है, अगर उसको एक रो में रखेंगे, कभी कभी ऐसे एक ही रो में रखेंगे तो ऐसे उनके दांत दिख रहा था ऐसे, लेकिन वो क्या रंग का था दांत, क्या रंग का होता है दांत मालूम है आपको, लेकिन वो सफेद नहीं था, वो लाल था, क्योंकि उनके अधरों का कांति वो दांत में गिरकर वो लाल दिख रहा था, ऐसे बता रहे हैं, वो द्युति ऐसे बता रहे हैं। पदा चलंती कल हंस गामिनी, जैसे एक हंस चलता है, पता नहीं कितने लोगों ने हंस देखा है चलते हुए, देखा आपने, सबने बतख देखा है चलते हुए, हंस देखा आपने, हंस एकदम सुंदर तरीके से, कभी कभी आपने ये देखा होगा एक मयूर, मयूर चलते हुए देखा आपने, जब कृष्ण बांसुरी बजाकर वृंदावन में चलते हैं मयूर भी साथ साथ चलते हैं पीछे पीछे, हाँ उनको अच्छा लगता है कृष्ण की बांसुरी, तो ऐसे इनका चलना भी एक मोर नहीं तो एक हंस के चलन के बराबर ऐसे दिख रहा था। हंस गामिनी सिंजत कला नूपुर धाम शोभिना, उनके पदकमलों में नूपुर था जो चमक रहा था। विलोक्य वीरा मुमुः समागता यशस्विनस्तत् कृतहृच्च यार्दिताः याम वीक्ष्यते नृपतयस् दुदारहास। व्रीडावलोक कृतचेतस उज्जितास्त्राः ये बता रहे हैं कि विलोक्य वीरा, अरे सब वीर लोग अभी देखा रुक्मिणी आते हुए मंदिर से, विलोक्य का मतलब है देखना, उन्होंने देखा अभी, मुमुहु समागताः, तभी सब लोग देख रहे हैं। वो मुमुहु का मतलब है मोहित हो जाना, ये रूप रुक्मिणी के रूप को जब देखा सब वीर लोग जो भी खड़े थे वो मोहित हो गए। कभी कभी आपने देखा होगा एक चित्र, किसी का हृदय का, हृदय को लगाकर ऐसे बाण लगाते हैं उधर, देखा आपने, का मतलब क्या है, अगर स्त्री हो पुरुष हो, अगर किसी किसी को देखकर उनके मन में अचानक एक आसक्ति नहीं तो आकर्षण पैदा होता है, तो उसको दिखाने के लिए वो ऐसे करते हैं, देखा ना आपने, तो मोहित हो जाना। इस दुनिया में जो भी सुंदरता है वो सब जीवों को मोहित करता है, वो मोहित कराने वाला कौन है, कामदेव है, कामदेव, उसके हाथ में एक गन्ने का धनुष है और फूल का बाण है, उस फूल के बाण को लेकर ऐसा करता हो, तो जब एक व्यक्ति के हृदय में आकर छक, तो उस समय क्या होता है, एक पुरुष हो स्त्री हो मोहित हो जाते हैं वो, कुछ क्षणों के लिए कोई देखता है किसी की मुस्कुराहट देखता है, ऐसा अचानक ये हो जाता है, शॉक हो जाता है, तो पुरुष स्त्री को देखते हैं, स्त्री पुरुष को देखते हैं, दुनिया में मोहित होते हैं इस दुनिया में। और ये लोग जो भी वीर खड़े थे, बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े मुंज के साथ आए थे, हैं बड़े बड़े, कोई हाथी में बैठा था, कोई घोड़े के ऊपर बैठा था कोई, हाँ, और अनेक लोग शादी करने के लिए भी प्रयत्न की रुक्मिणी के साथ, लेकिन हो नहीं पाया उनको, फिर भी आए थे देखने के लिए। और ये जो शिशुपाल ऐसे उनके साथ शादी होने वाला है ऐसे उनको पता चला उनको, तो वो सब लोग खड़े थे उनको देखने के लिए, तो वो लोग देखकर एक तरह की कामुक भावना से देख उनकी दृष्टि होता है, ऐसे उन्होंने देखा उनको मुमुहु, ऐसे बताते हैं, विलोक्य वीरा मुमुहु सम आगता अशस्विनस तत्कृत हृत चय आर्दिता, उनके हृदय पूरा लपडप तो हृदय करता ही है, लेकिन देखने के बाद लपडप बहुत जल्दी करने लगा उनके हृदय हृदय में। और हृदय में यह भी होने लगा, अगर कोई जीव काम वासना से आज वह काम वासना ऊपर उठता है तो वो बहुत तड़पता है, वो एक तरह का तृष्णा पैदा होता है उसके हृदय में, ऐसे वो पैदा हुआ उनको। व्रीड अवलोक कृत चेतस उज्जितास्त्राः, व्रीड का अवलोक मतलब है रुक्मिणी के वो तिरछी नजर जो है उसके बाण से इनके हृदय में छिद्र बन गया, क्योंकि सब वीरों के उधर जो भी थे। पेतुक्षितौ गजरथाश्वगा पेतु, आई थिंक द मीटर इज चेंजिंग वन मिनट, पेतुक्षितौ गजरथाश्वगता विमो, हाँ अभी मीटर चेंज हो गया, देखिए ऐसे पेतुक्षितौ गजरथाश्वगता विमूढ़ा, यात्रा चले न हरयेर्पयतीं श्वशोभां, सैवं शनैश्चलयति चलपद्मकोशौ, प्राप्तिं तदा भगवत प्रसमीक्षमाणा, देखिये पेतु का मतलब है सब गिर पड़े ऊपर से, किधर से कुछ कुछ लोग रथ में थे रुक्मिणी को देखकर उधर से नीचे गिर पड़े, कोई हाथी के ऊपर बैठा था ऊपर से गिर गया नीचे है? ऐसे ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि भागवत में एक और एक वर्णन आता है जब कर्दम मुनि को मिलने के लिए स्वयंभु मनु शत्रुप दोनों अपने बेटी को लेकर आते हैं ये देवहूति को, तभी एक बात आता है कि जब देवहूति कन्या थी अपने राजमहल में रहती थी, बाहर कभी पांव रखा ही नहीं है, वो हमेशा राजमहल में रहती थी, कभी कभी ऊपर माले में जाकर खेलती थी वो, तो ऐसे ये लकड़ी से बनाया हुआ गेंद होता है उसको ऐसे ऐसे लेकर खेलते हैं, स्त्रियां खेलती थी वो है? तो खेलने के लिए ऊपर गई, तो ऐसे खेलते खेलते जब खेल रही थी ऐसे ऐसे भाग भाग कर खेल रही थी वो ऊपर माले में अपने ही आनंद में, तो आकाश मार्ग से एक गंधर्व गया, देखिए उधर से खिड़की से देखा उन्होंने नीचे, इनको इतना आकर्षित हो गया ऊपर से नीचे गिर पड़ा हो ऐसे बताया उधर भी, तो इधर और एक वर्णन है ऐसा ही है? तो ये कर्दम मुनि बोलते हैं स्वयं मन को, मैंने सुना कि आपके बेटी की सुंदरता देखकर ये कर्दम एक गंधर्व गिर गया नीचे, फिर भी उस गंधर्व के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब क्या है वो तो कामुक था इसलिए वो ना बोल दिया उन्होंने, लेकिन वो कर्दम मुनि से शादी करने की इच्छा की थी इसलिए उन्होंने स्वीकारा उनको। इसी तरह इधर भी बात आता है कि पेतु हु, नीचे गिर पड़े वो लोग ऐसे बताते हैं या। और क्षितो का मतलब भूमि में गिर पड़े हैं, पेतो क्षितो गजरथ अश्वगता, उसका मतलब है वो लोग बैठे थे गज में नहीं तो रथ में नहीं तो अश्व में, उधर से गिर पड़े नीचे। विमूढ़ा यत्र चलेन हरये अर्पयति, इसका मतलब है वो लोग बेहोश हो गए और इस समय वो क्यों देख रही थी, वो सोच रही थी कि अभी तो ये सैनिक लोग बोलेंगे कि आप वापस चढ़ जाओ ये पालकी में, हम आपको वापस लेके जाएंगे, उसके पहले उन्होंने सोचा कि कृष्ण आए कि नहीं, मैं तो मंदिर के बाहर आ गई लेकिन अभी तक कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उस दिशा में उनको देखने की इच्छा ही नहीं थी, उन्होंने सोचा कि मैं किसी पर पुरुष को नहीं देखना चाहती, मैं सिर्फ कृष्ण को देखना चाहती हूँ, फिर भी अनेक लोग खड़े हैं क्या किया जाए, कृष्ण को ढूंढना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं उनकी ओर मुड़कर देखेंगी सब पर पुरुष भी सोचेंगे कि अगर हमारी ओर देखेगी हम भी देखेंगे अच्छा हो जाएगा है, ऐसे सोचेंगे, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं देखना नहीं चाहती, फिर भी उनके बीच में ही कहीं तो कृष्ण होंगे। जैसे हनुमान जी जब लंका गए थे, वो समुद्र पार करके रावण के लंका में जब अंदर प्रवेश किया, एक महल से दूसरा, तीसरा, चौथा, कूद मारते रहे वो। तो एक शाम का समय था, उन्होंने खिड़की से देखा कोई स्त्री अपने आप को सजा रही है, ठीक है। दूसरे महल में देखा कोई अभी पुरुष वापस लौटे हैं ऑफिस से शाम को, तो कोई किसी घर में देखा कोई कुकिंग कर रही है। तो इस तरह अलग अलग घर में देखा अलग अलग लोगों को, कहीं सीता मिल नहीं रही थी। अंत में वो आ पहुंचे रावण के बड़ा महल के ऊपर, उधर पुष्पक विमान था, तो ऊपर से नीचे जाने के लिए स्थान था। पुष्पक विमान तो तैर रहा था ऊपर ऐसे, और पुष्पक विमान का एक ऐसे क्षमता था कि मन की इच्छा के अनुसार वो दिशा बदल सकता है वो, हा? तो वो पुष्पक विमान के नीचे जो छिद्र था उधर से नीचे उतरा, तो उधर सीढ़ी से ऊपर से देखा उन्होंने, रात का समय हो गया था, तो वो बड़ा हॉल था और एक डिम लाइट लगाया था, और बीच में उन्होंने देखा अनेक स्त्रियां लेटी थी उधर। कोई स्त्रियां अपने हाथ में तानपुरा पकड़ी है, कोई स्त्रियां अपने हाथ में कुछ डमडम ऐसे पकड़ी है, कोई और स्त्रियां हैं जिनके हाथ में ऐसे राउंड वन जल जल करते हैं ना ऐसे वो पकड़ी है। लगता है कि उन्होंने जोरदार कुछ गाना गाया होगा और सो गए होंगे सब। और पास में देखा मांस का टुकड़ा था, शराब था, ये सब पड़ा था, और सब स्त्रियां एकदम खूबसूरत थी, उनमें एक भी दोष नहीं था। इसका मतलब क्या है, कभी कभी किसी का दांत बाहर होता है, ऐसे होता है, किसी का चेहरा सुंदर होता है लेकिन शरीर बड़ा मोटा होता है ना। लेकिन उन स्त्रियों में वो एक एक स्त्री, कोई तो देवकन्या थी, कोई ब्राह्मण पुत्री थी, कोई राजकन्या थी, सब बड़े बड़े राजकुमारियां थी। उनको रावण सबको लेके आकर रखा था उधर, और सब सो रहे थे, सबको आभूषण देकर ऐशाराम में उनको रखा था उसने, तो सब सो रही थी। कोई लेटी थी दूसरे स्त्री के पेट में, कोई लेटी थी उनके पांव में, ऐसे पूरा पूरा लेटी थी, और डिम लाइट में ऊपर से देख रहे थे, क्या ये सीता है, क्या ये सीता है, क्या ये सीता है, क्या। तो ऐसे देखते देखते अचानक उन्होंने देखा कि एक स्त्री लेटी है अलग दूसरे बेड में, एक क्रिस्टल बेड था उसके ऊपर वो लेटी है, और हनुमान खुश हो गए, ये ही होगी सीता, क्योंकि अलग लेटी है, वो खुश हो गए। देखने में भी बहुत डिग्निफाइड दिख रही है, एकदम आदरपूर्वक दिख रही है, तो अपने पूंछ को पकड़ते हुए ऊपर नीचे गए और नाचने लगे खुशी से। बाद में उनको पता चला कि ये सीता नहीं होगी, क्योंकि सीता कैसे लेटी रहेगी, आराम से कैसे सोएगी। वो कौन थी, मंडोदरी थी वो। और हनुमान ने ऊपर आ गए वापस, बोला कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, ये सब सोने वाली स्त्रियों, अभी सोने वाली स्त्री होती है उनका उनका कपड़ा ठीक तरह से पहना नहीं है, इस तरह देखना अच्छा नहीं है, मैं क्यों ऐसे देख रहा हूं एक एक स्त्री को, क्या मैं बड़ा बड़ा कुछ अपराध तो किया नहीं मैंने, ऐसे सोचा उन्होंने। बाद में उन्होंने सोचा नहीं नहीं, मैं इन स्त्रियों के बीच में भी मैं किसको ढूंढ रहा हूं, अरे मिशन को बुला नहीं हूं मैं, अगर मैं इन स्त्रियों को देखते समय मेरे मन में भोग करने की भावना आया हो और मैं एक स्त्री को पकड़ कर लेके जाता हूं, उसका मतलब है मेरा पतन हो गया, है कि नहीं। मैं इनको देख रहा हूं किस लिए, सीता को ढूंढने के लिए, ऐसे अपने आप बोले। इसलिए द मोटिवेशन डिटरमाइंस द राइट और रॉन्ग मोटिवेशन डिसाइड्स वेदर पर्सन इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर और नॉट। इसी तरह जिस तरह हनुमान सीता को ढूंढ रहे थे, ऐसे रुक्मिणी किसको ढूंढ रही थी, भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे थे उन राजाओं के बीच। वो राजा लोग सब सोचते थे मुझे ही ढूंढ रही है, अरे उनको दोबारा तुमको नहीं ढूंढ रहे हैं, वो कृष्ण को ढूंढ रही है वो। देखिए इसलिए इस दुनिया में भी जहां हम लोग आए हैं, हम लोग इस दुनिया के माया से प्रभावित होते हैं। कभी कभी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ये कूल ड्रिंक्स के लिए, कोई पुरुष ऐसे दे रहा है, कोई स्त्री ऐसे, हे मुझे दो ऐसे मांग रहे हैं। कितने लोगों ने देखा ऐसे एडवर्टाइजमेंट? अच्छा ना, ज्यादा लोग देखा नहीं, देखा ना। हाँ, वो क्यों ऐसे दिखाते हैं? उससे आपको आकर्षित करना चाहते हैं वो। और बेवकूफ लोग सोचते हैं कि हमको ही बुला रही है ऐसे है। कभी कभी ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट है, उसमें एक स्त्री ऐसे बोल रही है, आवा 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 ऐसे। अब बेवकूफ जी हमको बुला रही है सोचते हैं ऐसे। अरे तुमको नहीं बुला रही है बेवकूफ, वो सिर्फ उसको पैसा मिलता है इसलिए करती है ऐसे। इस तरह इस माया के दुनिया में सब लोग माया से मोहित होते हैं। इस तरह राजा लोग सोच रहे थे कि इसकी सुंदरता हमारे लिए है, लेकिन इसकी सुंदरता किस लिए है? भगवान के लिए है। इसलिए देखिए, इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो भगवान की खुशी के लिए है। एक वाटरमेलन का पेड़ है, वो वाटरमेलन तैयार करता है किस लिए? तो मैंने पूछा तो विद्यार्थी लोग बोल रहे थे, प्रभु जी हमको समर सीजन में बहुत प्यास होता है, इसलिए वाटरमेलन हमारे लिए, वाटरमेलन इसलिए आता है। लेकिन वाटरमेलन जब आता है वो भी एक जीव है। वो वाटरमेलन इच्छा करता है कि मेरे वाटरमेलन फ्रूट को कोई मंदिर तक पहुंचा दे भगवान को, लेकिन पहुंचाने के लिए उसके पास पांव नहीं है मंदिर चलने के लिए। अगर आप एक वाटरमेलन को लेकर आप मंदिर आकर भगवान को भोग चढ़ा दो तो अगले जन्म उसको मानव शरीर मिल जाएगा उसको। हाँ, इसलिए इस दुनिया में सब लोग जो भी करते हैं, टैलेंट है, वो सब किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। जैसे हमारे सुदन देव प्रभु अनेक मार्केट यार्ड के लोगों को जोड़ दिया उन्होंने भगवान की सेवा में। जो भी जिनको भी हम देखते हैं उनका भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए ऐसे। किसी नहीं तो अगर हम नहीं जोड़ेंगे वो क्या करेंगे? उसके खुद की भोग में यूज करेंगे, है कि नहीं? इस तरह है, ये लोग मूर्ख लोग थे। उत्सार्य वाम कर जैरल कान पांगैः, प्राप्तान ह्रियै क्षत नृपान ददृशेच्युतं च। ताम राजकन्यां रतमारुरुक्षतिं जहार कृष्णो द्विशतां समीक्षताम्। क्या साम शनैहि चलयति। हाँ, उसके पहले का शब्द दिखाइए, उसमें लास्ट टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साम, हाँ करेक्ट करेक्ट बेटर, स एवं सैवम वेरी गुड। उसके पहले का, उसके पहले का श्लोक, हाँ करेक्ट। देखिए स एवं, वो सा सैवम बनता है, सा एवं शनैः चलयति, वो धीरे धीरे चल रही थी। वो चल पद्म कोशव, उनके दो पांव दिख रही थी कैसे? दो पद्मों के रूप में, कमल के, दो कमल के रूप में दिख रही थी। प्राप्तिम तदा भगवतः, अभी देखा उन्होंने कृष्ण इधर ही हैं, खड़े हैं। प्रसमीक्षमाणा उत्सार्य वाम करजैहि अलकान अपांगैहि, उन्होंने क्या किया? अपने एक बाएं हाथ बोलते हैं इसको, अभी बाएं हाथ से उन्होंने ऐसे बाल को ऐसे किया कृष्ण को देखने के लिए। हाँ, बाल को ऐसे हटाकर उस दिशा में देखा उन्होंने। कर जय ही अलकान अपांग गई ही, वो तिरछे नगर नजर से देखा उन्होंने। प्राप्तान, तो प्राप्तान का मतलब अनेक राजा लोग खड़े थे उधर। क्रिया, तो उनको लज्जा आया उनको। ऐक्षतन रूपान, राजा लोगों को देखने के बाद। ददृशे, तभी उन्होंने देखा। अच्युतम च, अच्युत भगवान अच्युत कृष्ण उनके बीच में थे। ताम राजकन्या रथम आरुरुक्षतीम, इसका मतलब है रथ के ऊपर चढ़ने के लिए वो कृष्ण की दिशा में चल कर गई। तो कृष्ण की दिशा में गई, कृष्ण भी सामने आए। जहार कृष्ण, दिशताम समीक्षताम। कृष्ण ने तुरंत उनके हाथ पकड़कर उनको रथ में ले लिया, अपने पास ले लिया, सब राक्षसों के बीच में। कृष्ण भगवान की। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये रुक्मिणी ने बहुत खोज किया कृष्ण के लिए, है कि नहीं। इस तरह हम भी इस दुनिया में जब तक हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आतुर नहीं हैं, तब तक कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, तो कृष्ण को छोड़कर बाकी अनेक लोग सामने आकर खड़े हो गए। हम लोग हैं, लेकिन वो बोला कि सब हट जाओ, हम कृष्ण के लिए ढूंढ रही थी वो। जैसे राधा जी भी जब इस दुनिया में अवतरित हुई, उनकी आंख कोला ही नहीं उन्होंने। हाँ, तो उनके पिताजी ने सोचा कि क्या अंधा बच्चा है, फिर भी इतना खूबसूरत दिख रही है। तो एक दिन नारद मुनि आए थे, वो बोले वृषभानु को, मैं सारे ब्रज में और बरसाना में मैं पूछ रहा हूं, अभी कृष्ण का जन्म तो हुआ है अवतरण, लेकिन उनकी शक्ति किधर है, शक्तिमान आ गए, शक्ति किधर है। तो मैं बरसाना में घर घर जाकर पूछ रहा हूं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके घर में कुछ बच्चा है क्या आपके? तो वो सीतामा को लेके आए सामने, ये मेरा हमारा बेटा है। ठीक है, ये बेटा है, आपका कुछ बेटी है क्या? तो तुरंत माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। पूछे क्या हो गया? बोले कि हमारी बेटी है, लेकिन हम कैसे दिखाए आपको, वो तो अंधा है, वो आंख खोलती नहीं है। ऐसे बोले, ऐसा है, फिर भी कुछ समस्या नहीं, आप लेके जाओ अंदर। तो अंदर लेके गए, नारद मुनि देखा कि ये सुनहरा बच्चा है, तब तक आंचन है, तुरंत दंडवत प्रणाम किया। तो बोला वृषभानु को, आप चले जाइए, मैं थोड़े समय के लिए कुछ पूजा करना चाहता हूँ। तो साहब चले गए। तो नारद मुनि उस बच्ची का प्रदक्षिणा करने लगे, 10-12 बार प्रदक्षिणा किया, और नारद मुनि के अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गया नारद मुनि के शरीर में। रोम कड़े हो गए, आंख बहने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, और नारद मुनि गीत गाना शुरू किया। उस समय राधा जी ललिता विशाखा अपने सखियों के साथ कैशोर अवस्था में जो गोलक वृंदावन में सेवा करते, उस दर्शन दिया। जब नारद मुनि उस दर्शन को देखा, बेहोश हो गए नीचे गिरकर। हाँ, और वो वापिस उठकर विविध प्रार्थनाएं अर्पण किया उन्होंने। और उसके बाद जाते समय वृषभानु को बोला, वृषभानु तुम्हारे परम सौभाग्य के बारे में मैं क्या बोलूं, तुम चिंता मत करो, सही समय पर आंख खोलेगी, ऐसे बोला उन्होंने। तो कुछ समय के बाद जब ब्रजवासी आए थे उनके घर में, यशोदा नंद बाबा आए थे छोटे कृष्ण के साथ, तभी राधा जी को एक बड़ी सा क्रैडल मॉल में आपको झूला में रखा था। तो तभी अपने आप अकस्मात कृष्ण जाकर उस क्रैडल के ऊपर ऐसे अपने सर रखकर देखा, बच्ची को देखा, तभी तुरंत हाथ आंख खोला उन्होंने उस समय। इसलिए उनके जीवन में पहला व्यक्ति किसको देखा, राधा जी ने कृष्ण को देखा। इस तरह रुक्मिणी भी कृष्ण की खोज में थी, और जब अपने बाल हटाने के बाद जब कृष्ण को देखा उन्होंने, उस दिशा में वो चलने लगी, कॉन्फिडेंटली चलने लगी, और कृष्ण भी सामने आ गए तो उनको अपने पास उठा लिया। इससे क्या पता चलता है, हमारे यत्न और भगवान की कृपा दोनों चाहिए जीवन में। अगर हम यत्न नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा अपने आप नहीं आएगा। अगर कोई आपको रस्सी फेंक रहा है ऊपर से, आप कुआं के अंदर गिर गए हो, आप बोलोगे कि रस्सी अच्छा है लेकिन आप ऐसे उठा लो हमको, वो बोलेगा पकड़ो रस्सी, तुम पकड़ोगे तो मैं उठा पाऊंगा। हम बोलेंगे नहीं, पकड़ने के लिए आलसीपन है, आप ऐसे बांध लो हमको और उठाओ, ऐसे नहीं किया जाएगा। तो हमारी ओर से थोड़ा बहुत यत्न की जरूरत है। तो इस तरह आप देखेंगे रुक्मिणी भी भगवान की ओर गई, भगवान भी उनकी ओर आ रहे थे। इसका मतलब है जीवात्मा की परिश्रम की जरूरत है। स्वचेष्टितम शृण्वत शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विषते हृदि। ये श्लोक बताता है कि हमें कृष्ण कथा सुनना चाहिए, शृण्वत स्वकथा, शृण्वत श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए और स्वचेष्टा करना चाहिए। जैसे ये यशोदा मैया बांध रही थी छोटे काना को, जब बांध रही थी उस समय देखिए इसको एक फिस्ट बोलते हैं, वन फिस्ट। ये इस तरह उनके पास रस्सी कितना लंबा था, 100 फिस्ट लंबा था, ऐसे 100 गुना। और अलग अलग रंग बिरंगे था वो, क्योंकि अलग अलग गोपियों ने आकर रस्सी दिया, गाय को, गाय के पांव बांधने का रस्सी, वो सबको इकट्ठा करके उन्होंने बांधकर बड़ा रस्सी बनाया उन्होंने। लेकिन कृष्ण के कमर का साइज कितना था, इतना ही था। उनका आश्चर्य हुआ कि कृष्ण के कमर का साइज इतना छोटा है, मेरे पास ये सैकड़ों एक शत इतना लंबा रस्सी है, क्यों बांध नहीं पा रही हूं। इसका कारण है क्योंकि कृष्ण के अंदर एक विभूति शक्ति है जिससे वो विश्व रूप दर्शन को प्रकट करते हैं, और विभूति शक्ति किसी को अनुमति नहीं देता है कृष्ण को बांधने के लिए, और वही विभूति शक्ति कृष्ण के पेट के अंदर सारे ब्रह्मांड को दिखाता है। तो वो विभूति शक्ति परमिशन नहीं दे रहा था, ये तो भगवान है, आप कैसे बांध पाओगी भगवान को। तथा उस समय भगवान मुड़कर देखा यशोदा को, तो यशोदा के बाल बिगड़ गए थे, ऊपर के फूल भी नीचे गिर चुके थे, और पसीने छूट गए थे मोती के बराबर, और वो मुस्कुरा रही थी लेकिन बांधने के लिए प्रयत्न कर रही थी। देखिए मुस्कुराना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी दूसरी गोपियों ने बोला कि यशोदा लगता है कि तुम्हारे बेटे के तकदीर में नहीं लिखा कि इसको बांधा जाए, आज छोड़ दो उसको। लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, बांधूंगी इसको। लेकिन कभी कभी हम लोग प्रयत्न करते हैं, अगर काम होता नहीं तो हम क्या हो जाते हैं हताश हो जाते हैं, नहीं तो क्रोधित हो जाते हैं, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। लेकिन वो कुपित भी नहीं हुआ, हताश भी नहीं हुई, वो बांधने के लिए प्रयत्न जारी रखी और मुस्कुरा रही थी। तो भगवान ने उनके परिश्रम देखकर उनके हृदय में कृपा पैदा हुआ, कृपा शक्ति। अभी कृपा शक्ति और विभूति शक्ति के बीच में स्पर्धा हुआ, और दोनों में कौन जीता, कृपा शक्ति। देखिए इस तरह भगवान की कृपा शक्ति जीतता है, लेकिन उस कृपा को आकर्षित करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ा परिश्रम नहीं करेंगे तो हम कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस तरह रुक्मिणी से हम सीखते हैं। अभी समय हो गया आज का, तो अगले महीने भी ये पहला संडे है, पहला संडे रखा मैं 2 से 4 दोपहर को। तो एक प्रश्न मैं पूछने वाला था आपको, आप लोग अगर रेगुलर अटेंड करना चाहते हैं तो अगर संडे 2 से 4 रखेंगे तो आपको, आप में से कुछ लोग सुबह भागवतम क्लास के लिए भी आते हैं ना, आजकल हिंदी भागवतम क्लास होता है तो बीच में बड़ा गैप पड़ता है आपको, उसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको? कुछ कुछ लोग आसपास पड़ोस से आए हैं, आप लोगों में कितने लोगों को लगता है कि 2 से 4 टाइम अच्छा है आपको, नो प्रॉब्लम, अच्छा टाइम है, ठीक है। आपको अगर 10:30 से 11:30 12 चाहिए तो अलग संडे को मैं रख सकता हूँ। कितने लोगों को 10:30 से 12 चाहिए, 10:30 से 12, हाँ देखिए अनेक लोग हाथ पर, अच्छा लेकिन ज्यादा नहीं है, वो लोग बहुत कम है। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्त वृंद की।